एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे हस्ती और उनके विचारों की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं, जिनका असर आप देखिए सदियों से दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर रहा है। एक ऐसे विचारक जिन्होंने जीवन के जो बुनियादी सवाल है ना, उनसे जूझने का एक बिल्कुल अनूठा रास्ता दिखाया।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और हमारी ये जो बातचीत है, ये आधारित है माइकल कैरिथस की किताब बुद्ध पर। इसके जो मुख्य विचार है वो हमें मिले पुस्तक सारांशों से लिए हैं।
और ये चर्चा पता है आज भी उतनी ही, शायद पहले से भी ज्यादा मायने रखती है। जरा सोचिए, आजकल की ये भाग दौड़, ये तनाव और एक अजीब सी बेचैनी रहती है जिंदगी में।
बिल्कुल। तो क्या 2500 साल पहले के एक विचारक का वो व्यवहारिक दर्शन हमें कोई सुकून, कोई कोई दिशा दे सकता है? कैरिथस की किताब की एक खास बात मुझे ये लगी कि वो बुद्ध को किसी देवता या मिथकीय नायक की तरह नहीं देखते,
हाँ, ये अहम है।
बल्कि इतिहास के एक जीते जागते इंसान, एक मौलिक चिंतक और हाँ, समाज को बदलने वाले एक सुधारक के तौर पर देखते हैं।
सही कहा आपने। तो इस चर्चा का हमारा मकसद भी नहीं है कैरिथस के नज़रिए से ये समझना कि बुद्ध असल में कौन थे, उनके बुनियादी विचार क्या थे, और भाई क्यों वे उस जमाने में इतने क्रांतिकारी थे और आज भी इतने इतने रेलेवेंट बने हुए हैं। हम खास तौर पर उनके जो सामाजिक प्रयोग थे और दुख या पीड़ा से निपटने के उनके जो प्रैक्टिकल तरीके थे ना, उन पर गौर करेंगे, जैसा कैरिथस ने अपनी किताब में किया है।
तो चलिए शुरुआत लेखक से ही करते हैं, जिन्होंने बुद्ध को इस नज़रिए से देखा। ये माइकल कैरिथस कौन है?
माइकल कैरिथस देखिए एक जाने माने सामाजिक मानव विज्ञानी हैं, मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और साथ ही बौद्ध धर्म के बहुत गहरे विद्वान भी हैं। वो ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने दक्षिण एशिया के धर्मों और समाजों पर, खासकर जैन और बौद्ध परंपराओं पर काफी काम किया है।
अच्छा, तो ये थोड़ा और समझने वाली बात है, एक मानव विज्ञानी का बुद्ध पर लिखना, ये क्यों खास है? आमतौर पर तो दार्शनिक या धर्मशास्त्री ही लिखते हैं ना बुद्ध पर।
हाँ, यही बात दिलचस्प हो जाती है। कैरिथस सिर्फ शास्त्रों या फिलॉसफी के नज़रिए से नहीं देखते, एक मानव विज्ञानी होने के नाते वो ये सवाल पूछते हैं कि भाई विचार असल जिंदगी में कैसे जिए जाते हैं।
अच्छा,
हमारा सामाजिक माहौल, हमारे रीति रिवाज, आर्थिक हालात, ये सब हमारे विश्वासों को कैसे शक्ल देते हैं। वो बुद्ध को उनके समय के समाज, उनकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के पूरे ताने बाने में रखकर समझने की कोशिश करते हैं।
यानी ये सिर्फ विचारों का एनालिसिस नहीं है, बल्कि उन विचारों को जीने वाले इंसान और समाज का अध्ययन है। वाह,
बिल्कुल। और ये नजरिया हमें बुद्ध को किसी दूर बैठे रहस्यमयी धार्मिक हस्ती की तरह देखने के बजाय एक वास्तविक इंसान के रूप में देखने में मदद करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समय की जो सामाजिक उथल पुथल थी, राजनीतिक बदलाव थे और तरह तरह के दार्शनिक विचार जो चल रहे थे, उनके बीच अपना रास्ता खोज रहा था। कैरिथस बड़ी सावधानी से इतिहास में दर्ज बातों को उन कहानियों से अलग करते हैं जो शायद बाद में जोड़ दी गई, ताकि हम बुद्ध को उनके सही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझ सकें।
ये तो वाकई एक बहुत अलग और जरूरी नजरिया है। अब जरा किताब पर आते हैं, इसका मूल सार क्या है, मतलब ये किताब क्या कहना चाहती है संक्षेप में?
देखिए, ये किताब बुद्ध का एक संक्षिप्त मगर बहुत गहरा और जिसे कहते हैं ना विद्वत्तापूर्ण, वैसा परिचय है। ये उन्हें एक ऐतिहासिक शख्सियत, एक मौलिक विचारक, समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक व्यावहारिक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने रखती है।
और किताब का मुख्य तर्क क्या है फिर, कैरिथस का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट?
कैरिथस का मुख्य तर्क ये है कि बुद्ध की शिक्षाएं, आप देखिए, कहीं अचानक या बाहर से नहीं आ गईं। वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की जो खास सामाजिक और बौद्धिक परिस्थितियां थी ना
जी,
उनकी पैदाइश थी। सोचिए, उस समय गंगा घाटी में नए शहर बस रहे थे, पुराने कबीलाई ढांचे टूट रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, नए राज्य बन रहे थे और साथ ही कई नए धार्मिक और दार्शनिक विचार आपस में टकरा रहे थे।
एक उथल पुथल का दौर था।
बिल्कुल, बुद्ध की शिक्षाएं इसी माहौल में इंसानी दुख, यानी दुख की जो यूनिवर्सल समस्या है, उसके सीधे और प्रैक्टिकल समाधान के तौर पर उभरी। बुद्ध ने दुख को एक तरह की बीमारी की तरह देखा।
बीमारी? दिलचस्प।
हाँ, जिसका कारण समझा जा सकता है, जिसका निदान हो सकता है और जिसका इलाज भी मुमकिन है।
यह बात और भी रोचक हो जाती है। तो क्या किताब का मकसद बुद्ध को रहस्य के आवरण से निकालना है, उन्हें उनके समय के एक ऐसे विचारक के रूप में दिखाना है जिनके विचार उस समय तो क्रांतिकारी थे ही, आज भी हमारे काम के हैं?
आपने एकदम सही पकड़ा। कैरिथर्स बुद्ध के अनुभव पर आधारित लगभग साइंटिफिक जैसे तरीके पर जोर देते हैं। देखिए, बुद्ध ने ईश्वर है या नहीं, दुनिया कैसे बनी, आत्मा अमर है या नहीं, ऐसे गहरे आध्यात्मिक सवालों में उलझने से परहेज किया।
अच्छा।
उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि भाई इंसान के जीवन में जो दुख या असंतोष है उसे कैसे खत्म किया जाए। उनका बताया रास्ता किसी विश्वास या आस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि वो नैतिक जीवन, मानसिक अनुशासन और सही समझ यानी प्रज्ञा का एक प्रैक्टिकल मार्ग था। इसे आप एक तरह की साइकोलॉजिकल और एथिकल थेरेपी भी कह सकते हैं।
चलिए अब थोड़ा और विस्तार में चलते हैं। बुद्ध के समय का भारत कैसा था, वो माहौल क्या था जिसमें ये विचार पनपे?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, खासकर गंगा घाटी का इलाका, वो एक बड़े बदलाव का दौर था। पुराने जो कबायली समाज थे उनकी जगह अब बड़े बड़े राज्य ले रहे थे, नए शहर उभर रहे थे, व्यापार और सिक्कों का चलन बढ़ रहा था। ये सब एक तरफ तरक्की ला रहा था तो दूसरी तरफ पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ भी रहा था। इससे लोगों में एक तरह की अनिश्चितता, एक बेचैनी भी पैदा हो रही थी।
और धार्मिक या दार्शनिक स्तर पर क्या चल रहा था, कौन से बड़े विचार थे उस समय?
उस समय देखिए दो बड़ी धाराएं थीं। एक तरफ थी स्थापित ब्राह्मणवादी परंपरा, जिसमें वेदों का अधिकार, यज्ञ और कर्मकांड और जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था, मतलब जाति,
हाँ, जाति व्यवस्था।
उसका बोलबाला था। दूसरी तरफ एक नया आंदोलन जोर पकड़ रहा था जिसे श्रमण आंदोलन कहते हैं। इसमें कई तरह के सन्यासी, तपस्वी, दार्शनिक, घुमक्कड़ विचारक थे जो ब्राह्मणवादी सत्ता और कर्मकांडों को चुनौती दे रहे थे।
अच्छा।
वे जीवन के दुखों का हल अपने अपने तरीके से खोज रहे थे। कोई घोर तपस्या कर रहा था, कोई अलग अलग तरह के ध्यान का अभ्यास कर रहा था, कोई भौतिकवादी दर्शन दे रहा था। बुद्ध भी इसी श्रमण परंपरा की ही उपज थे।
अब आते हैं सिद्धार्थ गौतम के जीवन और उनकी उस खोज पर। एक राजकुमार के महल छोड़कर सत्य की तलाश में निकलने की कहानी, ये तो बहुत मशहूर है।
हाँ, वो कहानी हम सबने सुनी है, लुम्बिनी में जन्म, कपिलवस्तु के राजकुमार, फिर महल के बाहर वो चार दृश्य देखना, बूढ़ा, बीमार, मृत व्यक्ति और एक शांत सन्यासी, और जीवन की सच्चाई से सामना होना, फिर सबको छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़ना, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। कैरेथर्स मानते हैं कि ये कहानियां बाद में एक गहरे सत्य को समझाने के लिए बनी।
अच्छा।
ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी असल खोज। उन्होंने उस समय के जो बड़े ध्यान गुरु थे, आलर कलाम और उद्दक रामपुत्ता, उनसे सीखा। उनकी ध्यान की जो ऊंची अवस्थाएं थीं उनको भी पाया, लेकिन उन्हें लगा कि इससे दुख का पूरी तरह अंत नहीं होता।
और फिर उन्होंने वो कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया
जी,
जिसके बारे में हम सुनते हैं।
जी, कई सालों तक शरीर को बेहद कष्ट दिया, खाना पीना लगभग छोड़ दिया, शरीर एकदम सूख गया, पर उन्हें ये एहसास हुआ कि शरीर को सिर्फ दुख देने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि मन और कमजोर हो जाता है। यहीं से उनकी एक क्रांतिकारी खोज हुई, मध्यम मार्ग की।
मध्यम मार्ग?
हाँ, यानी जीवन जीने का वो तरीका जो न तो भोग विलास में डूबने का है और न ही शरीर को बेकार में कष्ट देने का, एक संतुलन का रास्ता था ये।
ये बात तो बुद्ध को एक प्रयोगधर्मी विचारक बनाती है ना, मतलब उन्होंने पहले से चले आ रहे तरीकों को खुद आजमाया और जब वे कारगर नहीं लगे तो अपने अनुभव के आधार पर उन्हें छोड़ दिया।
बिल्कुल बिल्कुल, एक सच्चे अन्वेषक की तरह। और इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए गहरे ध्यान और चिंतन के बाद उन्हें बोधगया में उस पीपल के पेड़ के नीचे बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ।
कैरेथस इस ज्ञानोदय को कैसे देखते हैं? क्या ये कोई चमत्कार था या कोई रहस्यमयी घटना?
कैरेथस इसे किसी चमत्कार या देवीय कृपा के बजाय एक गहरी मानसिक और बौद्धिक सफलता मानते हैं। ये गहरे ध्यान, एकाग्रता और चीजों के असली स्वभाव की जो तर्कपूर्ण जांच पड़ताल होती है ना, उसका नतीजा था।
और इस ज्ञान में उन्हें क्या समझ आया? उनकी सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल खोज क्या थी?
उनकी सबसे गहरी समझ थी चीजों के कारण कार्य के नियम की, जिसे बौद्ध धर्म में पटिच्च समुपाद कहते हैं, यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या कारण कार्य श्रृंखला।
पटिच्च समुपाद?
हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में हर चीज किसी न किसी कारण से पैदा होती है और दूसरी चीजों पर निर्भर करती है। कुछ भी अपने आप में अकेला या स्थायी नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, जैसे एक चेन रिएक्शन होता है ना।
हाँ हाँ
बिल्कुल वैसा। इसी समझ से उन्होंने जाना कि दुख, दुख की जड़ में अज्ञान है, और इस अज्ञान से पैदा होती है तृष्णा, तन्हा, मतलब चीजों को पाने की, उनसे चिपके रहने की या उनसे दूर भागने की जो हमारी गहरी इच्छा है। और अगर इस कारण कार्य की चेन को समझकर तोड़ दिया जाए तो दुख को खत्म किया जा सकता है।
अच्छा, तो यहीं से उनकी वो मुख्य शिक्षाएं निकलती हैं, चार आर्य सत्य।
हाँ, और कैरेथस उन्हें एक तरह से डॉक्टर के नुस्खे की तरह पेश करते हैं। बहुत दिलचस्प तरीका ही है।
कैसे?
पहला, दुख का सत्य। दुख, सबसे पहले बीमारी को पहचानना कि भाई जीवन में दुख है। यह सिर्फ शारीरिक दर्द या तकलीफ नहीं, बल्कि एक गहरा असंतोष है जो हर चीज के बदलते स्वभाव, अनित्य और उन चीजों से हमारे लगाव के कारण पैदा होता है।
ठीक है।
दूसरा, दुख के कारण का सत्य। समुदाय, फिर बीमारी का कारण जानना। इस दुख का कारण है तड़ना, तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह, हमारा किसी चीज को पकड़कर रखने या दूर धकेलने का आग्रह है। तीसरा, दुख निरोध का सत्य। निरोध, फिर ये जानना कि इलाज संभव है। हाँ, दुख को खत्म किया जा सकता है। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं।
निर्वाण।
हाँ, और चौथा, दुख निरोध के मार्ग का सत्य। मग, और आखिर में इलाज का तरीका, दुख खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं।
आर्य अष्टांगिक मार्ग, आठ अंगों वाला रास्ता, इसमें क्या क्या शामिल है?
इसे मोटे तौर पर हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है नैतिक आचरण, शील।
शील।
हाँ, इसमें आती है सही बोली, मतलब झूठ, चुगली, कड़वी बात ना बोलना, सही कर्म, हिंसा, चोरी, दुराचार से बचना, और सही आजीविका, ईमानदारी से दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कमाना।
ठीक है।
दूसरा हिस्सा है मानसिक अनुशासन, समाधि। इसमें आता है सही प्रयास, बुरे विचारों को रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ाना, सही सजगता, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, और सही एकाग्रता यानी ध्यान का अभ्यास।
और तीसरा?
तीसरा है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी सही समझ और सही सोच। सही समझ मतलब चीजों के असली स्वभाव को समझना, जैसे चार आर्य सत्य को समझना, और सही सोच मतलब करुणा, मैत्री, अनासक्ति वाले विचार रखना।
अच्छा, और एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका जिक्र होता है, अनात्मन, यानी नो सेल्फ या अनात्मा का सिद्धांत। ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में।
हाँ, ये बुद्ध की सबसे मौलिक और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। उनका कहना था कि कोई स्थायी, न बदलने वाली आत्मा या मैं जैसी चीज नहीं है।
कोई मैं नहीं है,
स्थायी मैं नहीं है। जिसे हम मैं, मेरा कहते हैं, वो असल में पांच चीजों का रूप, शरीर, वेदना, अनुभव, संज्ञा, पहचान, संस्कार, मानसिक आदतें, और विज्ञान, चेतना का एक लगातार बदलता हुआ जोड़ या प्रवाह है।
अच्छा, जैसे?
जैसे एक नदी, हर पल बदल रही है, पानी बह रहा है, किनारे बदल रहे हैं, पर हम उसे एक ही नदी कहते हैं। वैसे ही हमारा स्व भी है। ये समझना कि कोई ठोस स्थायी मैं नहीं है, हमारे अहंकार को, हमारे मैं और मेरे से जुड़े दुख को कम करने में मदद करता है।
ये तो गहरी बात है। अच्छा, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने क्या किया? क्या वे एकांत में चले रहे?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने अगले 45 साल तक घूम घूम कर लोगों को वही सिखाया जो उन्होंने खुद जाना था। वे एक बहुत कुशल और अथक शिक्षक थे।
अच्छा।
हाँ, वे जिससे बात करते थे उसी की भाषा और समझ के स्तर पर जाकर अपनी बात रखते थे। तर्क, उदाहरण, कहानियां, सवाल जवाब, हर तरीका अपनाते थे। बुद्ध का एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग था, शायद उस समय के हिसाब से तो क्रांतिकारी ही था।
कैसे?
ये एक ऐसा समुदाय था जिसमें शामिल होने का आधार जन, जाति या परिवार नहीं था, बल्कि साझा मूल्य, नैतिक आचरण और ज्ञान की खोज थी। कोई भी, किसी भी जाति या वर्ग का व्यक्ति अगर उन नियमों को मानने को तैयार हो तो संघ में शामिल हो सकता था।
अरे वाह!
उस समय के कठोर जाति आधारित समाज में ये सीधे सीधे सामाजिक बराबरी का संदेश था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक खुली चुनौती भी। ये दिखाता था कि इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और ज्ञान से तय होती है।
ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अब अगर हम कैरेथस की किताब की जो मुख्य संदेश हैं, उनको समेटना चाहें, तो क्या बातें सबसे अहम निकल कर आती हैं?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे जरूरी निष्कर्ष है, बुद्ध सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति और एक समाज सुधारक थे। कैरिथर्स उन्हें रहस्य के दायरे से निकालकर एक ऐसे एक्टिव व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं जो अपने समय की सामाजिक समस्याओं जैसे असमानता या आध्यात्मिक सत्ता का जो एकाधिकार था उसका व्यावहारिक हल ढूंढ रहे थे।
हाँ, और दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि उनका पूरा जोर व्यावहारिकता और दुख को खत्म करने पर था। जैसा आप कह रहे थे, कैरिथर्स बताते हैं कि बुद्ध का मकसद बिल्कुल चिकित्सीय था, दुख की बीमारी का इलाज खोजना।
सही।
वो बेकार की बहसों या ईश्वर आत्मा जैसे सवालों में नहीं उलझे जिनसे दुख कम करने में सीधी मदद न मिलती हो। उनका ध्यान सिर्फ इस पर था कि क्या चीज काम करती है।
तीसरा विषय है मध्यम मार्ग, और ये सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं था बल्कि सोचने का भी तरीका था। हर तरह की अति से बचना, न भोग में डूबना, न खुद को कष्ट देना, न ये मानना कि आत्मा हमेशा रहती है, न ये मानना कि मरने के बाद सब खत्म, बीच का रास्ता।
चौथा अहम बिंदु है अनात्मन, नो सेल्फ और पटिच्च समूह पाद, कारण कार्य श्रृंखला। ये वो गहरी दार्शनिक बातें हैं जो हमारे अहंकार और दुख की जड़ पर चोट करती हैं। सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये मैं, मेरा, मुझे, ये शब्द कितनी परेशानी खड़ी करते हैं, है ना?
बिल्कुल, मेरा अपमान हो गया।
हाँ, मुझे ये क्यों नहीं मिला? अनात्मन की समझ इस मैं के बोझ को हल्का कर सकती है।
और पांचवा, जो सामाजिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, संघ। एक सामाजिक क्रांति के रूप में जन्म के बजाय योग्यता और अभ्यास पर आधारित समुदाय बनाकर बुद्ध ने उस समय की सबसे कठोर सच्चाई जाति व्यवस्था को सीधे चुनौती दी। आज के भारत में भी जब जाति इतनी बड़ी हकीकत है, तब सोचिए 2500 साल पहले ये कितना बड़ा कदम रहा होगा।
सही बात है।
ये दिखाता है कि आत्मसुधार और समाज सुधार कैसे जुड़े हुए हैं।
किताब बुद्ध के विचारों का निचोड़ देने वाले कई दमदार कथनों को भी उजागर करती है। कुछ ऐसे मुख्य विचारों या कथनों पर बात करते हैं जो उनके संदेश का सार है।
जरूर। जैसे बुद्ध का ये कहना कि मैं केवल एक चीज सिखाता हूं, दुख और दुख की समाप्ति। कितना सीधा और फोकस्ड है ये।
हाँ, एकदम पॉइंट पर।
ये उनके काम के फोकस और उनकी जबरदस्त व्यवहारिकता को दिखाता है, कोई इधर उधर की बात नहीं।
एक और विचार जो उनके लक्ष्य को बताता है, जैसे विशाल समंदर का एक ही स्वाद होता है, नमक का स्वाद, वैसे ही मेरे सिद्धांत और अनुशासन का एक ही स्वाद है, मुक्ति का स्वाद। यानी अंतिम लक्ष्य है तृष्णा, नफरत और अज्ञान से आजादी, वही असली स्वतंत्रता है।
और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज के समय में। अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं बनो, धर्म यानी उनकी शिक्षाओं को दीपक की तरह थामो।
ये बहुत शक्तिशाली बात है।
हाँ, ये सलाह व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देती है और आंख मूंद कर किसी गुरु या बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने से मना करती है। खुद अपने अनुभव और समझ की रोशनी में रास्ता खोजने की बात है। आज के दौर में जहां हम अक्सर बाहरी सलाह या गुरुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, ये विचार बहुत मायने रखते हैं। बात का निचोड़ है, ये दिखाता है कि दुख कुछ कारणों से पैदा होता है और अगर हम उन कारणों को समझकर हटा दें तो दुख भी खत्म हो सकता है। इसमें एक उम्मीद है, एक आशा है कि हम अपनी स्थिति बदल सकते हैं। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है।
तो सवाल ये उठता है कि इन 2500 साल पुरानी बातों का आज की जिंदगी में क्या काम? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या इनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है?
नहीं, कैरिथर्स यही दिखाते हैं कि ये बहुत व्यवहारिक हैं। जैसे समस्या समाधान के लिए ही ले लीजिए।
अच्छा, कैसे?
वो जो चार आर्य सत्य का ढांचा है ना, आप उसे किसी भी मुश्किल, चाहे वो निजी हो या दफ्तर की, को समझने और सुलझाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक, समस्या क्या है? दुख। दो, इसका असली कारण क्या है? समुदाय। तीन, आइडियल स्थिति क्या होगी बिना समस्या के? निरोध। चार, वहां तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? मार्ग। एक फ्रेमवर्क मिल जाता है सोचने का।
वाह, और भावनात्मक संतुलन के लिए भी कुछ है? आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है।
बिल्कुल, हर चीज के बदलने वाले स्वभाव, अनिच को याद रखना और सजगता, माइंडफुलनेस का अभ्यास, ये हमें अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। जब कोई तेज भावना उठे, जैसे गुस्सा या चिंता, तो फौरन रिएक्ट करने के बजाय उसे बस एक मानसिक घटना की तरह देखना सीखना।
मतलब दूर से देखना।
हाँ, ये जानना कि ये भी गुजर जाएगा, हमें शांत रहने में मदद करता है। थोड़ा स्पेस मिल जाता है रिएक्ट करने से पहले।
अहंकार को कम करने में भी मदद मिलती होगी वो नो सेल्फ वाली बात से।
हाँ, अनात्मन यानी नो सेल्फ के विचार को थोड़ा भी समझने से हम कम डिफेंसिव होते हैं, दूसरों की बातों को ज्यादा खुले मन से सुन पाते हैं, जब मेरी बेइज्जती या मेरा फायदा दांव पर कम लगा हो तो टकराव और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं, बेहतर टीम प्लेयर बन सकते हैं, बेहतर रिश्ते बना सकते हैं।
और नैतिकता और खुशी का क्या रिश्ता है? शील की बात हुई थी?
हाँ, शील, सही बोली, सही कर्म, सही आजीविका सिर्फ नियम नहीं है, ये मन की शांति की बुनियाद है। जब हम जानबूझकर दूसरों को कम नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे अपने मन में अपराध बोध, पछतावा, बेचैनी ये सब कम होती हैं, और शांत और साफ मनी खुशी और गहरी समझ के लिए जरूरी है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है।
सही बात। और हाँ, लचीलापन यानी रेजिलियंस भी बढ़ता होगा।
जरूर, जिंदगी में सुख दुख, सफलता असफलता तो आते जाते रहते हैं। बदलाव या क्षणभंगुरता को जीवन की सच्चाई मान लेने से हम इन उतार चढ़ावों का सामना ज्यादा शांति और हिम्मत से कर पाते हैं। दुख अक्सर बदलाव का विरोध करने से ही बढ़ता है, स्वीकार करने से ताकत मिलती है।
तो इस तूनी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे खास या कहें तो चौंकाने वाली बात क्या रही इस किताब या इस नजरिए में?
मेरे लिए सबसे दिलचस्प ये रहा कि बुद्ध को एक व्यावहारिक समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखना। जैसा कैरिथल्स दिखाते हैं, वो सिर्फ उपदेश देने वाले गुरु नहीं थे, बल्कि एक ऐसे प्रयोगधर्मी विचारक थे जिनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि दुख खत्म करने के लिए असल में क्या काम करता है। उनका ये अनुभव पर आधारित लगभग वैज्ञानिक जैसा तरीका मुझे बहुत प्रभावित करता है।
और मेरे लिए वो संघ का विचार,
हाँ,
एक ऐसा समाज बनाना जो जन्म या जाति पर नहीं बल्कि योग्यता, साझा मूल्यों और अभ्यास पर आधारित हो, ये सामाजिक बदलाव का एक अद्भुत उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान का अंदरूनी विकास और समाज का बाहरी ढांचा एक दूसरे से जुड़े हैं। कैरिथर्स का जो मानव विज्ञानी नजरिया है ना, वो हमें बुद्ध की शिक्षाओं को उनके सही ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में रखकर उनकी अहमियत समझने में मदद करता है। इससे वो बातें और भी ज्यादा प्रासंगिक और प्रभावशाली लगती हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर हम बुद्ध को मुख्य रूप से एक समाज सुधारक के तौर पर देखें, जैसा कैरिथर्स हमें देखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये नजरिया आज हमारे समाज की समस्याओं जैसे असमानता, बंटवारा या आपसी टकराव को समझने और हल करने के हमारे तरीकों को कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?
जरूर सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।